चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा,
मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा।
जैसे गगन में चांद चलता है चलता है,
उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है।
जैसे गगन में चांद चलता है चलता है,
उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है।
मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा।
ओम शांति। एक बार किसी कॉलेज के चार विद्यार्थी, जिनके दूसरे दिन एग्जाम थी, टेस्ट थी, और वो लोग भूल ही गए कि टेस्ट है, और रात किसी पार्टी में चले गए और पार्टी में इतना लेट हो गया कि वहां उनको याद आया कि दूसरे दिन टेस्ट है, तो क्या बहाना दे। तो वो चारों एक युक्ति रचते हैं, अपने पूरे कपड़ों पर ग्रीस और गंदगी धूल मिट्टी लगाकर सुबह सुबह कॉलेज पहुंचते हैं, डीन के ऑफिस में जाते हैं और डीन से कहते हैं कल हम एक बहुत जरूरी काम से बाहर गए थे और आते समय हमारी गाड़ी का टायर बस्ट हो गया और उसको ठीक करते करते हमारा ये हाल हो गया और हम अभी अभी पहुंचे हैं। तो आज की एग्जाम हम नहीं दे पाएंगे, कृपया हमारी अलग से एग्जाम लीजिए। तो डीन थोड़े देर सोचते हैं, वो कहते हैं ठीक है, तुम लोगों की एग्जाम 3 दिन के बाद। तो वो तुरंत मान जाते हैं और खुश भी हो जाते हैं। पर डीन कहते हैं ये तुम्हारी स्पेशल कंडीशन टेस्ट होगी, विशेष एग्जाम होगी। वो कहते हैं कोई बात नहीं, हम तैयार हैं। 3 दिन तक वो चारों विद्यार्थी अच्छे से पढ़ाई करते हैं और एग्जाम देने के लिए आ जाते हैं। डीन कहते हैं तुम्हारी चारों की अलग एग्जाम होगी, पर एक शर्त है, चारों को अलग अलग कमरे में बैठना पड़ेगा। चारों अलग अलग कमरे में बैठते हैं। एग्जाम 200 मार्क की होती है। पहला प्रश्न, आपका नाम क्या है, 1 मार्क। दूसरा प्रश्न, 199 मार्क्स, कौन सा टायर बस्ट हुआ था। 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन राइट फ्रंट, दूसरा ऑप्शन राइट लेफ्ट, तीसरा ऑप्शन बैक राइट, चौथा ऑप्शन बैक लेफ्ट। डीन कहता है कैसी रही। जीवन भी एक ऐसी ही गाड़ी है और विशेष ब्राह्मण जीवन भी एक गाड़ी की तरह ही है। इस जीवन में भी यदि कोई भी टायर पंचर हो जाए, कुछ भी खराबी आ जाए, या बार बार रिपेयर करना पड़े और बार बार गैरेज में ले जाना पड़े, तो यह ब्राह्मण जीवन की यह गाड़ी आगे नहीं चल पाएगी, चाहे हम फिर कितने ही बहाने दें। परंतु धर्मराज ऐसी ही एक परीक्षा हमारी भी लेगा फिर। वहां डीन था, यहां पर धर्मराज होगा। हम कोई बहाने नहीं दे सकेंगे, अगर बहाने दिए तो ऐसा ही हमारा हाल भी होगा। और गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, उसका उपयोग यदि न किया जाए तो क्या कहेंगे। गाड़ी की शोभा है चलने में, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, रुकावटें आए, समस्याएं आए, प्रलोभन आए, साइट सीन आए, परंतु जो निरंतर चलता रहे वह गाड़ी है। कभी कभी चलती हुई गाड़ी को पीछे भी लेना पड़ता है, रिवर्स गियर। हेनरी फोर्ड ने सबसे पहली बार विश्व में जब कार बनाई थी, उस कार में रिवर्स गियर नहीं था। उसके ख्याल में ही नहीं आया था कि ऐसा भी कुछ करना चाहिए। जब कार बनकर तैयार हो गई और कार सामने चली जाए तो वापस घर में आने के लिए बहुत लंबा चक्कर लगाना पड़ता था। फिर धीरे धीरे उसको समझ में आया कि कुछ ऐसा भी किया जा सके कि कार वैसे ही वापस आ जाए, और उसने फिर रिवर्स गियर ढूंढा। मनुष्य ने रिवर्स गियर कार का ढूंढ लिया, पर अपने मन का न ढूंढ पाया है। अपने जीवन का न ढूंढ पाया। जा रहा है, जा रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है और भाग रहा है, किस ओर उसे पता नहीं। क्या हमारा जीवन भी ऐसे ही तो नहीं भाग रहा? पता नहीं कहां पहुंचेंगे, पता नहीं जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूं, पता नहीं जो संकल्प लेकर मैं चल रहा हूं, जो आदतें, संस्कार और कर्म के साथ ये जीवन भागा जा रहा है। गंतव्य क्या है, डेस्टिनेशन क्या है? अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं देता, स्पष्टता नहीं है, कंफ्यूजन है, कभी किधर तो कभी किधर तो कभी किधर। मुरली में आया है अभी अभी, तुम्हें एक रास्ते पर चलना है, राम इंटरनेशनल हाईवे पर। आदत है यहां वहां जाने की, गलियों में घुसने की, अंग्रेजी में इसको zigzagging कहते हैं, साइकोलॉजी में zigzagging नेचर ऑफ माइंड। एक व्यक्ति अपने कुत्ते के साथ जा रहा है, चैन नहीं है कुत्ते को, कुत्ता उसके साथ है, पालतू है उसका पेट। व्यक्ति 5 किलोमीटर चलता है, कुत्ता उसके साथ है, परंतु कुत्ता 10 किलोमीटर चलता है। क्यों? रास्ता एक ही है, परंतु व्यक्ति 5 किलोमीटर चल रहा है और कुत्ता जो उसके साथ है वो 10 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि हर गली में उसे जाकर भौंकना ही है, क्योंकि हर जगह जाकर सूंघना ही, ये क्या है वो क्या है, कभी इस गली में कभी उस गली में, कभी यहां घुसता है कभी वहां घुसता है, कभी दूसरे कुत्तों के साथ झगड़ा करता है, कभी भौं-भौं करता है, जानना चाहता इधर क्या है उधर क्या है, यहां क्या है वहां क्या है, इधर उधर उधर उधर, और फिर वापस रास्ते पे आता है, फिर इधर फिर उधर फिर उधर, और फिर रास्ते वापस रास्ते पर आता है। zigzagging। बाप ने कहा है एक ही मार्ग है ये श्रीमत, पर इसको छोड़कर बच्चे इस गली में उस गली में इस गलियारे में उस गलियारे में घुसते रहते हैं, इस संबंध की गली में फिर पश्चाताप, फिर धोखा, और फिर वापस राम इंटरनेशनल एक्सप्रेस हाईवे। फिर थोड़े देर चले और फिर विकर्म और फिर पाप और फिर दैहिक दृष्टि और फिर काम और फिर क्रोध और फिर लोभ और फिर अहंकार और फिर आलस, इधर उधर इधर उधर और फिर वापस इधर और फिर पश्चाताप, फिर रोना, फिर आंसू, फिर दुख, फिर प्रायश्चित, फिर फ्रस्ट्रेशन। मार्ग क्यों हम छोड़ रहे हैं और भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? मुरली पढ़ रहे हैं और फिर भी भटक रहे हैं। उसमें लिखा सब है और वो हमें पता सब है, फिर भी जीवन उलझा हुआ है। क्यों? क्या किया जाए? उसकी आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। रूस के इससे पहले कि हम इस विषय की चर्चा करें और एक दूसरी कहानी आपको बताएं जो हमें बहुत पसंद है, रूस के लियो टॉलस्टॉय की लिखी हुई यह कथा, हाउ मच लैंड डस द मैन नीड, कहानी का शीर्षक। एक किसान गरीब रूस के किसी गांव में रहता है, खेती है थोड़ी सी पर गरीब बहुत है। एक दिन एक सन्यासी उसकी कुटिया में आता है और वो सन्यासी, वो परिव्राजक उसे कहता है, तुम यहां क्या कर रहे हो, तुम्हें तो वहां जाना चाहिए, वो एक जमीन है, वो एक गांव है, वहां जाओ तुम साइबेरिया में, यहां क्या कर रहे हो, वहां पर जमीन बहुत सस्ती है, वहां जाओगे तो बहुत जल्दी अमीर बन जाओगे। वो किसान रात भर सो नहीं पाता और सुबह होने तक निर्णय कर लेता है कि मुझे ये सारी जमीन, अपनी जो जमीन है छोटी सी, सब कुछ बेच बाज कर वहां चले जाना है, उस नई जगह पर। और सुबह वो ऐसा ही करता है, उस नई जगह पर पहुंच के वहां के लोगों से पूछता है, यहां जमीन के क्या भाव है? वो लोग कहते हैं, जमीन के भाव यहां तो मुफ्त में है, केवल एक ही शर्त है, सुबह से एक स्थान से भागना आरंभ करना पड़ेगा, जितना तुम भागोगे उतनी जमीन तुम्हारी, परंतु एक और शर्त है, रात में सूर्यास्त से पहले पहुंच जाना है वहीं पर जहां से भागना आरंभ किया था। वो किसान रात भर सो नहीं पाता, सोचता है कितना भागू और कितना नहीं भागू, कितनी जमीन ले लू और कितनी नहीं ले लू, और सुबह सुबह पहुंच जाता है वहां पर। सारा गांव इकट्ठा होता है, एक लकीर खींचती हुई होती है और वहां से वो तैयार, अब उसे भागना है, निर्णायक घड़ी है जीवन की, और वो भागना आरंभ करता है, भागता है, भागता है और भागता है और भागता है। सुबह से चालू करता है, सूरज सिर पर आ जाता है, पसीना आने लगता है, भागता है और भागता है और भागता है, भूख लगती है, सोचता है खाना तो लाया हूं, पर यदि खाना खाने के लिए रुक गया तो जमीन थोड़ी कम मिलेगी, खाना तो सारे जिंदगी भर खाना ही है, क्यों अभी मैं टाइम वेस्ट करूं, और खाने को फेंक देता है और भागने लगता है, और हाफता है और भागता है और हाफता है और भागता है और भागने लगता है और भागने लगता है। एक बज जाता है, दो बज जाता है, प्यास लगती है, सोचता है पानी पी लूं, परंतु पानी तो सारे जीवन भर पिया जा सकता है, जमीन थोड़ी मिलेगी। पानी की बोतल फेंक देता है और भागता है और भागता है और हाफता है। लगभग तीन बज जाते हैं, सोचता है अब वापस जाना पड़ेगा, अब जाना ही चाहिए, क्योंकि सूर्यास्त से पहले पहुंचना भी है। जैसे ही ऐसे सोचता है और मुड़ने का प्रयत्न करता है, देखता है सामने की जो जमीन है, बहुत ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा उपजाऊ उर्वर फर्टाइल लैंड। सोचता है थोड़ा सा भाग लू, बाद में टर्न करूंगा, और फिर थोड़ा और भागता है। अब सोचता है अब तो वापस टर्न करना ही चाहिए, और जैसे ही मुड़ने जाता है फिर देखता है ये जमीन तो उससे भी ज्यादा अच्छी दिखाई दे रही है, और उर्वर, और थोड़ा सा और भागता है। चार बज जाते, अब सोचता है अब तो लौटना ही पड़ेगा, नहीं तो पहुंच नहीं पाऊंगा। और फिर लौटता है और तेजी से भागने लगता है, ऐसा भागता है कि आज तक कभी नहीं भागा होगा, इतनी तेजी से भागता है। सूर्योदय सूर्यास्त उधर होने को है, भाग रहा है और भाग रहा है और भाग रहा है और भाग रहा है। एक समय आता है कि गांव वाले दिखाई देने लगते हैं, परंतु अभी बहुत दूर है, और तेजी से भागता है। उधर सूर्यास्त हुआ कि हुआ, अब बस इतना तेज भागता है, इतना तेज भागता है कि वो लकीर यहां होती है उससे बस कुछ मील की दूरी पर ही धड़ाम से नीचे गिरता है और मर जाता है। गांव वाले कहते हैं एक पागल आज फिर मर गया। उसका नौकर आता है और उसे दफनाता है वो छोटी सी जगह में, उतनी भूमि की उस टुकड़े में। हाउ मच लैंड डस द मैन नीड, ऐसा क्यों हुआ, क्या उत्तर है? ऐसा क्यों हुआ? लालच। और ऐसा क्यों हुआ? क्या इच्छाएं बहुत ज्यादा थी, इच्छाएं बहुत ज्यादा थी, लालच था, और असंतोष, और समझ की कमी थी। कौन सी समझ या कौन सा अज्ञान? वापस लौट जाना है, इसकी समझ की कमी, और यही तो हो रहा है, और टाइम प्लान वीक। ये बहुत पावरफुल आंसर है। टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया, पता नहीं चल पाया रुकना कहां है, भागे जा रहे और भागे जा रहे। भगवान कह रहा है मैं आ चुका हूं, अब मैं तुम सबको वापस ले जाने आया हूं, फिर भी भागे जा रहे। ये तुम्हारे रिटर्न जर्नी का समय है, और हम भाग किस ओर रहे हैं? बीत चली दुख भरी रात स्वर्णिम प्रभात मैं लाया हूं, ताज तख्त और तिलक साथ सौगात मैं लेकर आया हूं। त्यज अगर मगर आ जाओ इधर, परमात्म शरण की बाहों में आ जाओ, मेरे लाडलो राज योग की राहों में। गाड़ी में बहुत सारी चीजें होती है, हम ऐसी 8 चीजें लेंगे जो एक कार में 8 चीजें होती है। चीजें तो बहुत सारी पार्ट्स होते हैं, परंतु फिर भी 8 ऐसी मुख्य चीजें जो एक कार में होती है। इस जीवन रूपी गाड़ी को यदि चलते रहना है तो जैसे उस गाड़ी में उन 8 चीजों की आवश्यकता है, वैसे ब्राह्मण जीवन रूपी गाड़ी में भी ऐसी 8 चीजों की आवश्यकता है। सबसे पहली पेट्रोल, सबसे पहली पेट्रोल। इस गाड़ी में ज्ञान रूपी पेट्रोल की आवश्यकता है। अभी अभी आया था, कितनी बार ज्ञान स्नान करो? 2 बार। हम कितनी बार कर रहे हैं? मुरली सुनना ज्ञान स्नान है या कुछ और ज्ञान स्नान है? क्या ज्ञान स्नान की परिभाषा केवल मुरली सुनना या मुरली पढ़ना है? मुरली पढ़ ली, फटाफट फटाफट एक बार पढ़ ली, 15 मिनट में पूरा कर लिया, ज्ञान स्नान हो गया। क्लास में गए, सेंटर पर गए, मुरली क्लास में बैठे, मुरली सुनी, बहन जी बता रही है हम सुन रहे, सेंटर गए, डायरी खोली, डेट लिखी, मीठे बच्चे, प्रश्न लिखा, उत्तर लिखा, डायरी बंद हुई, डायरी बाजू में, और फिर थोड़ा सा डोलना चालू, और बीच बीच में थोड़ी सी झपकी, और फिर एकदम से जाग आई, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति, तो फिर से डायरी उठाई और फिर से धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट धारणा के लिए मुख्य सार, दूसरी पॉइंट वरदान, और वरदान पूरा लिखा, और फिर स्लोगन लिखा, और फिर डायरी बंद हुई, और डायरी अभी कल मिलेंगे, आज का काम पूरा हुआ। अब कोई कुछ नहीं कहेगा, हम सेफ है, नहीं गए तो लोग कह सकते हैं तुमको माया ने खा लिया, इस डर के मारे, भाई तो नहीं, परंतु कोई कोई माता है डायरी सेंटर पर ही छोड़कर जाती है टेबल के नीचे, दूसरे दिन सीधा खुलेगी, क्या ये ज्ञान स्नान है? या फटाफट फटाफट मोबाइल खोल लिया और मुरली ले ली और फटाफट फटाफट मुरली पढ़ ली, क्या ये ज्ञान स्नान है? इस ब्राह्मण जीवन रूपी गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल अर्थात ज्ञान चाहिए, अर्थात ज्ञान का चिंतन, ज्ञान का मनन, ज्ञान का अध्ययन, ज्ञान की गहरी स्टडी, सेल्फ स्टडी। एक है क्लासरूम स्टडी, एक है सेल्फ स्टडी, दो चीजें हैं। क्लासरूम स्टडी तो सब कर रहे, परंतु सेल्फ स्टडी कितने कर रहे? जो स्टूडेंट्स आगे निकल जाते हैं वो होते हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं। दुर्योधन पूछता है द्रोणाचार्य से कि आप ये अर्जुन क्यों आगे चला गया हमसे, हम सब ने शिक्षा एक साथ ली, आपका बेटा भी था अश्वत्थामा, उसने भी शिक्षा ली, फिर भी ये अर्जुन क्यों चला गया आगे? द्रोणाचार्य कहते हैं मैंने तुम सबको समान शिक्षा दी, परंतु अर्जुन वहां पर रुका नहीं, उसने अभ्यास किया, प्रैक्टिस की, एकांत में बैठकर अभ्यास किया, जितना मैंने सिखाया उससे भी ज्यादा वो सीखा, स्व अध्ययन से, स्व अभ्यास से, सेल्फ स्टडी से, स्वाध्याय। शास्त्र कहते हैं तीन चीजें जरूरी है, श्रवण, मनन, निनिध्यासन। श्रवण अर्थात सुनना, मनन अर्थात जो सुना है अब उस पर चिंतन करो, अब उस पर मनन करो, और फिर निनिध्यासन अर्थात उसको प्रैक्टिकल में लाओ, उसका प्रयोग करो। राजविद्या राजकुयम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम दम्य सुसुखम कर्तव्ययम। हे अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुझे सुना रहा हूं वो राजविद्या है, वो गुह्यतम ज्ञान है, ऐसा गुह्यतम ज्ञान, जितनी गुह्यतम विद्याएं होगी संसार में, द मोस्ट क्लैंडेस्टीन, द मोस्ट सीक्रेट, ये है वो, ये वह ज्ञान है पवित्र मिदम उत्तमम, पवित्र को भी पवित्र करने वाला। यदि ज्ञान उतना ऊंचा है तो लगन भी इतनी ऊंची चाहिए, धारण ऐसे ही नहीं होगा। वो इस ज्ञान गाड़ी में ज्ञान का पेट्रोल यदि डालना है, उसमें मिक्सचर ना हो, तो सबसे पहली चीज जो जरूरी है वो है ज्ञान का चिंतन। रोज समय निकालकर एकांत में जाकर जो सुना है सेवा केंद्र पर, जो पढ़ा है कमरे में बैठकर या ऑफिस में बैठकर, उसका मनन करना, ये जो कहा है बाबा ने ये क्यों कहा है, ये जो कहा है आज चंदन के वृक्ष किसको कहा है, ये जो कहा है पहले माता का सिलसिला क्यों कहा है, ये जो कहा है महंगाई चरित्र की महंगाई, कैरेक्टर इन्फ्लेशन, किस इन्फ्लेशन की बात, किस महंगाई की बात बाबा कर रहे, ये जो कहा है गरीबी चरित्र की गरीबी, स्पिरिचुअल पावर्टी आध्यात्मिक दरिद्रता, डबल इन्फ्लेशन, ये क्या है, क्यों कहा, कब कहा, किसने कहा, कैसे कहा, किस संदर्भ में कहा, किस लिए कहा, और कहा तो उसका अर्थ क्या है, गुणार्थ क्या है, वाक्यार्थ क्या है, शब्दार्थ क्या है, क्या केवल सुनकर छोड़ दिया और पढ़कर छोड़ दिया, यह अज्ञान पेट्रोल नहीं। तो गाड़ी में पेट्रोल भरो अपने, नहीं तो गाड़ी चल नहीं सकेगी। फिर पूछेंगे योग कैसे करते हैं, योग की विधि क्या है, योग की विधि क्यों पूछना पड़ रहा है, क्योंकि ज्ञान की कमी है। ज्ञान को बढ़ाओ। स्वतः ही योग क्या करना है और कैसे करना है स्वतः ही आएगी, क्योंकि योग का आधार ज्ञान है। पहला। दूसरा है स्टीयरिंग व्हील, कौन सा है, बाबा। कल माताओं ने बहुत अच्छे अच्छे अनुभव सुनाए, जब एक उनको अलग अलग संबंधों से बाबा को याद करने की एक एक्सरसाइज दी गई थी, बाबा मेरा ड्राइवर है तो वो क्या क्या करता है, बाबा पायलट है तो वो क्या क्या करता है, बाबा सारथी है तो वो क्या क्या करता है, बाबा खिवैया है तो क्या क्या करता है। इस जीवन की जो गाड़ी है उसका वो स्टीयरिंग व्हील ही बाबा को बना दो, वो अपने आप चलेगी। हमें सोचना नहीं पड़ेगा अब क्या करना है और कैसे करना है, समर्पण और स्थूल में भी ये कर्म करते हुए ये समझना कि मैं नहीं वो चला रहा है, चाहे कोई भी गाड़ी। स्थूल में भी ये प्रयोग करना कि बाजू में वो बैठा है, स्थूल में भी ये प्रयोग करना कि पीछे वो बैठा है, स्थूल में भी ये प्रयोग करना कि चलते हुए भी वो साथ साथ है, वो चला रहा है। Thy will shall be done, राजी तेरी रजा में, जैसा वो रखे जहां वो ले जाए, जय विधि राखे राम ताई विधि रहिए, जिस हाल में वो रख रहा है उसी को स्टीयरिंग व्हील बना दिया, अब वो चला रहा है। तीसरा, चार पहिए। इस ब्राह्मण जीवन रूपी गाड़ी के चार पहिए हैं, जो कि राजयोग के चार पिलर्स जो हम अपनी कोर्स की किताब में दिखाते हैं, कौन कौन से। सबसे पहला ज्ञान संस्कार, ज्ञान योग। किताब वापस पढ़नी चाहिए वापस। फिर राजयोग के चार पिलर्स कौन कौन से हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा नहीं, संस्कार नहीं। सबसे पहला पिलर है ब्रह्मचर्य। अगर ब्रह्मचर्य रूपी टायर बार बार बस्ट होता है, बार बार पंक्चर होता है, तो गाड़ी चलेगी क्या। सबसे पावरफुल टायर तो यही है। इस संपूर्ण जीवन का आधार संपूर्ण पवित्रता है। जहां पवित्रता खंडित हो रही है, जो रस शरीर में उत्पन्न हो रहा है, किस गति में बह रहा है, ऊर्ध्व रहता है या अधो। एक माली है जिसके पास बहुत बड़ा बगीचा है, उसमें तरह तरह के भांति भांति के फूल है, बहुत सुगंध वाले फूल है। वो माली ऐसा बागवानी करता है, ऐसी बागवानी, और फिर महीने भर के बाद सारे फूलों को एकत्र करता है, सारे फूल, फिर उनका पराग उनका एक रस बनाता है और फिर उस रस को जाकर नाली में बहा देता है। ये मूर्ख माली है या बुद्धिमान, क्या कहेंगे? महामूर्ख। देह में जो वाइटल फोर्स बह रहा है, उत्पन्न हो रहा है, नीचे बह जाए तो शरीरों को जन्म देगा, ऊपर बह जाए तो योगी की सारी शक्तियां जागृत होगी, सहस्त्रार में जाएगा। कौन है महामूर्ख या महाज्ञानी, स्वयं स्वयं से पूछना है। किसी भी स्थान पर, किसी भी समय और किसी भी परिस्थिति में ब्रह्मचर्य का खंडन न होना, सच अनब्रोकन सेलिबसी, ऐसी पवित्रता की, ऐसी ब्रह्मचर्य की धारणा अर्थात योगी जीवन, वो सारी ऊर्जा एकत्र होगी। वो जो इसको नष्ट कर रहे हैं उनकी क्या स्थिति है, कितनी उनकी एकाग्रता है, कितना बल है संकल्पों में और वाणी में। राजयोग का प्रथम स्तंभ ही ब्रह्मचर्य है। इस यज्ञ में जितनी ही बहनों ने सहन किया, भाइयों ने सहन किया, क्यों सहन किया? इसी एक धारणा की वजह से। क्यों ब्रह्मा को इतनी गालियां मिली? इसी एक धारणा की वजह से। क्यों उनके प्रति ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया, सॉर्सरी एंड लेचरी। द सिंध ऑब्जर्वर नाम के अंग्रेजी अखबार में ब्रह्मा के लिए इन दो शब्दों का प्रयोग किया गया था, सॉर्सरी जादू टोना करने वाला, लेचरी कामुक कामांध व्यक्ति। क्यों इतनी गालियां? एक ब्रह्मचर्य की धारणा की वजह से। यदि ये टायर पंचर हो रहा है, गाड़ी चल नहीं सकेगी। यदि कोई एक मास पवित्र है और एक दिन अपवित्र है तो किस लाइन में जाएगा? यदि कोई 24 घंटे पवित्र है और 23 घंटे और 50 मिनट पवित्र है और 10 मिनट अपवित्र है तो किस लाइन में जाएगा? पवित्रता वालों की लाइन में या अपवित्रता वालों की? जो देह में फंसे हैं वो चेतना के आकाश में कैसे उड़ेंगे? जिनका रस देह में है वो इस गुह्यतम ज्ञान को कैसे समझेंगे? जिनका मन वासना से आंदोलित है वो प्रभु प्रेम में कैसे मगन होंगे? जिनको देह को देखने की इच्छा है वो प्रभु को कैसे देखेंगे? जो आकार में फंसे हैं वो निराकार में कैसे खोएंगे? जिन्हें देह के सुख सुख देते हैं और सुख भासते हैं वो अतिंद्रिय सुख को कैसे अनुभव करेंगे? इस भट्टी से स्वयं के ब्रह्मचर्य की पवित्रता की प्रतिज्ञा को फिर रिवाइज करना है। कुमारों से मुलाकात 1969 अव्यक्त मुरली। देह सांप है, सांप में विष होता है। वो जो सांप है अगर काट दे तो बचाया जा सकता है, परंतु जो ये सांप है काम का, यदि ये काट दे तो बचना मुश्किल है। इस देह पर यदि नजर जाती है अव्यक्त महावाक्य इस देह पे भी यदि नजर जाती है दृष्टि से और संकल्प से, आंखों से नहीं, संकल्प और नजर से, टच से नहीं, इस देह को यदि टच करते हो किससे, दृष्टि से और संकल्प से, इसके लिए बाबा ने कहा है महा महा महापाप। हाथ से टच नहीं, दृष्टि से। बाइबल में लिखा है इफ यू लुक अपॉन अ वुमन एंड देयर इज एन एडल्ट्री इन योर हार्ट यू हैव ऑलरेडी कमिटेड एडल्ट्री। हाथ लगाया नहीं है परंतु मन में काम आ गया है। दूसरा आधार शुद्ध अन्न। इस सभा में ऐसे कितने भाई हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, है बहुत सारे, पीछे भी है। जो भी भोजन हम बनाएं उसमें शुद्धता हो, पवित्रता हो, भोग लगाया हुआ हो। यदि हम न भी बना रहे हो तो उसे उस योगयुक्त स्थिति में स्वीकार करें, ना कि टेबल टॉक्स वहां पर हो, राजनीति की चर्चा, फिल्मों की चर्चा, व्यर्थ की चर्चा, सेवाओं की बहुत विस्तार, जितना हो सके मौन, जितना हो सके एकांत। शुद्ध अन्न स्तंभ है। तो दूसरा पहिया है भोजन, और जितना वो सात्विक हो उतना ही अच्छा। जब हम कह रहे हैं सात्विक, तीन प्रकार है भोजन के, एक सात्विक, एक राजसिक, एक तामसिक। तामसिक अर्थात मदिरा, बासी चीजें, नॉनवेज, वो सब कुछ। राजसिक अर्थात जिसमें उत्तेजना हो, जो बहुत तीखा है और बहुत मसाले वाला है और बहुत तेल वाला है, बहुत चटपटा है, जिसे खाकर बार बार खाने की इच्छा हो, वो राजसिक अन्न है। सम्यक आहार अर्थात सम्यक आहार की तीन परिभाषा है, वह भोजन जो उत्तेजना उत्पन्न ना करे, इंद्रियों में उत्तेजना, मित आहार, मॉडरेट डाइट, वह भोजन जो आलस्य उत्पन्न ना करे, इतना खा लिया, इतना खा लिया, आकंठ, यहां तक गरिष्ठ भोजन। शक्तिशाली योग के लिए दो चीजें खाली चाहिए, पेट और बुद्धि। भोजन जितना हो सके, अगर हो सके तो खुद ही अपने हाथ से बनाए, उसमें पावर ज्यादा है, शक्ति ज्यादा है। हम हमेशा एक उदाहरण देते हैं जो हमने कहीं पढ़ा था। बाबा के पास चार थालियां आई, पहली थाली मधुबन से, भोजन के लिए पैसे देने वाले कोई और, भोजन लाने वाले कोई और, भोजन बनाने वाले कोई और, बाबा को भोग लगाने वाले कोई और, भोजन परोसने वाले कोई और फिर खाने वाले कोई और, मधुबन की थाली। दूसरी थाली आई बाबा के पास सेवा केंद्र की, भोजन के लिए पैसे किसी और के, भोजन लाने वाला कोई और, भोजन बनाने वाला वही या कोई और, भोजन को भोग लगाने वाला वही या कोई और भोजन खाने वाला वही या कोई और, दूसरी थाली। तीसरी थाली गृहस्थ से आई, भोजन लाने वाला, कमाने वाला कोई और, बनाने वाला माता कोई और, खाने वाला या फिर वही, खाने वाला, भोग लगाने वाला वाली माता, खाने वाला वही या कोई और। एक चौथी थाली बाबा के पास आई, एक कुमार की थाली, भोजन कमाने वाला खुद, लाने वाला खुद, बनाने वाला खुद, परोसने वाला खुद, भोग लगाने वाला खुद। अब बताओ बाबा की नजर सबसे पहले किस थाली की ओर जाएगी? कई बार मुरलियों में आया है, अपना भोजन खुद ही बनाओ, शक्ति भरेगी उसमें। और एक दूसरी सूक्ष्म बात, निर्भरता न हो। अकेले पड़ जाओ तो खुद बना सको, ऐसी योग्यता। यहां छोटे से कुमार भी बैठे हैं, अभी से सीख लेना, ठीक है? हाथ ना फैलाना पड़े, भीख ना मांगना पड़े। तीसरा दिव्य गुण, तीसरा पहिया, और चौथा सत संग। ऐसे कितने हैं जो सोचते हैं, ऐसे कितने हैं जो सेंटर पर नहीं आते हैं और कहते हैं हम लोग रूम पर ही मुरली पढ़ ले तो अच्छा लगता है। सेंटर पर कभी कभी, रोज थोड़ी जाना होता है। ऐसे हैं कि सभी आते हैं। संगठन का अपना बल है, संगठन का अपना वायुमंडल है। एक है एकांत में बैठ के कमरे में पढ़ लेना, सब कुछ इंटरनेट मोबाइल सब कुछ है, पर एक है यहां आना, इस ऑर्बिट में, इस परिधि के अंदर प्रवेश करना, ये ईश्वरीय यज्ञ है। इसकी वाइब्रेशन स्ट्रांग है, पढ़ तो वहां भी सकते हैं परंतु धारणा यहां होगी, इस संगठन के वायुमंडल में। तो ये चार, ये हो गया तीसरा पहिया। चौथा ब्रेक, इस ब्राह्मण जीवन रूपी गाड़ी में ब्रेक है, रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर। स्वयं को रोक सके, वो ना करे जो करे जा रहे है, जा रहे, अंदर से दिल खा रहा है, अंदर से दिल कह रहा है ये नहीं करना चाहिए, ये श्रीमत नहीं, ये मनमत है, ये परमत है, परंतु रोक नहीं पा रहे, आवेग इतना अधिक है कि रोका नहीं जा रहा है। अपने ब्रेक को चेक करो, शायद ब्रेक ठीक नहीं है। देह को कंट्रोल करना, मन बुद्धि संस्कार, अभी अभी वरदान आया था, यथार्थ हैंडलिंग पावर, जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को कंट्रोल करते हैं उनके पास स्वतः ही एक्यूरेट हैंडलिंग पावर आ जाता है। बस भाग रहे, जमीन और सुंदर है, और भाग रहे, और हाफ रहे। भगवान कह रहा है टर्न बैक, हम कह रहे जमीन थोड़ी सी ले लेता हूं, ऐसी फर्टाइल लैंड फिर नहीं मिलेगी। रूल एंड कंट्रोल, रूल ओवर सेंसेस, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय, ऐसी 10 इंद्रिया है, पांच पांच, सबको अपने वश में रखना, रंग रूप स्पर्श शब्द गंध, रूप रस स्पर्श शब्द गंध, रूप रस, रूप आंखों से देख रहा है, रस स्पर्श शब्द गंध, गंध सूंघ रहे हैं, पांच रस है, पांचों ही रसों को वश में रखना, कंट्रोलिंग पावर। और पांचों में से सबसे पावरफुल कौन सा है? पांच रस में से कौन से? दृष्टि तो है, उससे भी पावरफुल एक है टेस्ट, जो रसिंद्रियों को वश में नहीं रख सकते वो जनेंद्रियों को कैसे वश में रखेंगे? तो रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर का क्या चाहिए? शक्तिशाली पावरफुल ब्रेक. फिर है एक्सेलरेटर, परमात्म प्रेम का एक्सेलरेटर. यदि तेजी से आगे बढ़ना है इस ब्राह्मण जीवन में, यदि गाड़ी को फुल स्पीड से चलाना है तो एक्सेलरेटर वैसा चाहिए. ईश्वरीय प्रेम जितना अधिक उतना पुरुषार्थ अधिक. सुबह की क्लास में इस पर हमने विस्तार से चर्चा की. प्रभु प्रेम, बाबा से प्यार, क्या परिभाषा है बाबा के प्यार की? बाप से प्यार अर्थात क्या? बाप से प्यार अर्थात सात चीजों से प्यार. ये नहीं कह सकता था हम तो हृदय चीर के दिखाएंगे अंदर बाबा ही है. बाप से प्यार अर्थात टोटल सेवन थिंग्स. फर्स्ट, बाप से प्यार अर्थात मुरली से प्यार. कोई कहे कि बाबा से तो हमारा बहुत प्यार है पर ये मुरली हमें बार बार पढ़ना अच्छा नहीं लगता. मुरली का चिंतन, मनन, अध्ययन, चर्चा, वो हमें ठीक नहीं लगता है. ज्ञान तो बहुत अच्छा है पर पूछो मत. अरे बहुत अच्छी भट्टी थी, तुम आए क्यों नहीं? क्या था? अब वो मत पूछो क्या था. बहुत अच्छा था बस, इतना बोल दिया ना. पहले तो आते नहीं हो और फिर पूछते हो क्या था. बहुत अच्छा था. बाप से प्यार अर्थात मुरली से प्यार. फर्स्ट, बाप से प्यार अर्थात ब्राह्मण परिवार से प्यार. बाबा बहुत अच्छा है पर ये निर्गुण हारे, कोई गुण नहीं है इनमें. ये परिवार बहुत ठीक नहीं है. पहले जब आए थे तो बहुत अच्छा लगा था परिवार, कितने प्यार और कितना सहयोग. बाद में पता नहीं क्या क्या हो गया, दुश्मन जैसे लगते हैं. प्रभु परिवार. कोई मां से कोई कहे कि आप तो हमको बहुत अच्छी लगती पर तुम्हारा ये जो बेटा है ना, ये बिल्कुल इससे नफरत है मुझे, तो वो मां क्या कहेगी? प्यार करेगी? हम कहे कि बाबा आप तो बहुत अच्छे हो पर तेरा ये जो परिवार, क्योंकि ये तो हमने मांगा ही नहीं था. हमने तो द्वापर में से कहा था कि तुम आ जाओ भक्ति में, परिवार साथ में आएगा. ये पता था क्या? हमने क्या मांगा था मंदिरों में जाके? हे प्रभु तुम कहां हो, नयनहीन को राह दिखाओ, हे आकाश में रहने, सिंहासन पर रहने वाले आ जाओ. क्या 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 गीत गाए थे, परंतु साथ में परिवार आएगा ये कि कभी भी किसी ने, बाबा ने बताया नहीं था. तो बाबा ये परिवार में प्रॉब्लम है, बाकी तुम बहुत अच्छे हो, इनका कुछ करो. तो क्या बाबा स्वीकार करेगा तुम्हारे प्यार को? बाप से प्यार अर्थात परिवार से प्यार. तीसरा, बाप से प्यार अर्थात राजयोग से प्यार, उसके सिखाए हुए राजयोग से प्यार. बाबा से तो बहुत प्यार है पर उसका योग करना पसंद नहीं है. योग में बैठे तो कुछ कुछ होने लगता है पैरों में, टांगों में. बाप से प्यार अर्थात सेवा से प्यार. बाप से प्यार अर्थात यज्ञ से प्यार. एक कहा, हाँ आएगा अभी, एक कहा परिवार, अब कह रहे यज्ञ. बाप से प्यार अर्थात मधुबन से प्यार. वहां जाकर मधुबन निवासी ये कर रहे, वो कर रहे, ये भी ऐसा करते, वो भी ऐसा करते, वहां तपस्या करने गए हो या दूसरों का परचिंतन करने गए हो? ये लोग भोजन के समय ऐसा कर रहे, वो ऐसा कर रहे, तुम क्या कर रहे हो? सातवां, बाप से प्यार अर्थात श्रीमत से प्यार. श्रीमत ही जिन्होंने अपना जीवन बना लिया है, ऐसी सात बातें चाहिए तो ही कहेंगे भगवान से प्यार. नहीं तो केवल बाबा बाबा कहने से कुछ नहीं होगा. नॉट एवरी वन हु कमेट एंड सेथ लॉर्ड लॉर्ड बट ही दैट डुएथ द विल ऑफ माई फादर शैल एंटर द किंगडम ऑफ हेवन. जीसस अपने शिष्यों से कहता है कि हर एक नहीं वो आकर केवल चिल्लाए कि हे प्रभु और हे प्रभु, उससे कुछ नहीं होगा। ही दैट डूएथ द विल ऑफ माई फादर, जो मेरे पिता की मत है, श्रीमत है, विल है, इच्छा है, चाहना है, उस पर जो चलेगा शैल एंटर द किंगडम ऑफ हेवन, अन्यथा नहीं। एक्सेलरेटर है परमात्म प्रेम, फिर है शॉक एब्जॉर्बर। कार में होते हैं शॉक एब्जॉर्बर, ट्रेन में भी होते हैं, दो ट्रेन के डिब्बे बीच में क्या होता है वो बफर, ट्रेन अगर रुक जाए अचानक तो टकराएंगे नहीं, बफर होता है बीच में। वैसे ही गाड़ी में भी शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, स्पीड ब्रेकर आ जाए तो उतना धक्का नहीं लगता है, अगर शॉक एब्जॉर्बर ना हो तो धक्का लगेगा। धारणाएं हैं शॉक एब्जॉर्बर, केवल ज्ञान सुनना नहीं, धारण करना, वो जीवन में आ जाए। सारी धारणाएं सुबह से लेकर रात तक, अगली क्लास इसी पर होगी, मनचर्या और दिनचर्या। जितनी धारणाएं बताई है वो सभी जो रोज मुरलियों में आती है, तुम्हें हबच नहीं होनी चाहिए, छिपा के कुछ ना खाओ, झूठ नहीं बोलो, तुम्हारी आंख नहीं डूबनी चाहिए, किसी के पास कुछ नया दिखा कि तुरंत पूछा ये कहां से लिया, किसी के पास कोई नई वस्तु दिखी ये बैग कहां से ली, ये पर्स कहां से ली, इसकी कीमत क्या है, उसकी कीमत क्या है, प्राइस टैक्स, प्राइस टैग पर्सनैलिटी, हर चीज में बिजनेस, धारणा। फिर है मिरर, श्रीमत रूपी मिरर, इसमें ज्ञान भी हो सकता है, पवित्रता भी हो सकता है। कौन से आईने में स्वयं को देखना है? अभी अभी बाबा ने प्रश्न पूछा था शांतिवन में जो मुरली चली, आईने में देखो कि मेरी प्यूरिटी की क्या परसेंटेज है। अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल और संगम काल, सभी में, चारों काल में तुम पवित्र होते, अब अपनी प्यूरिटी चेक करो। श्रीमत के आईने में देखो कि इन सारी बातों में से मैं कितना कर रहा हूं। फिर है हेडलाइट, समान रूपी हेडलाइट, समान अंधकार के पथ में प्रकाश है, निरंतर कोई ना कोई समान लेना और उसका अभ्यास करना। समान कहां से निकालेंगे? रोज की मुरली से। परंतु ऐसी पैनी दृष्टि हमें निर्माण करनी है कि आज मैं इसमें से किस समान का अभ्यास करूं। कितने हो गए? आठ। और तो बहुत सारी चीजें हैं, ये आप सबको हम होमवर्क दे रहे हैं। गाड़ी में और कौन कौन सी चीजें होती है और उनका आध्यात्मिक महत्व क्या है? ओम शांति।